देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे अर्जुन, जो मेरे जन तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता हम हमारे पिछले कई सत्रों से, पांच पहलू भगवान श्री कृष्ण के जन्म के संदर्भ में, जनन वर्णन वंदन सांत्वन और गमन, तो हमने इतने सत्रों में अब ये पांच पहलू, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। गमन तक हमने पिछली बार चर्चा हमारी हुई थी और अब हम भगवान के दिव्य कर्म, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो भगवान जब अपने जन्म के विषय में कह रहे हैं कि भगवान का जन्म वो दिव्य है, और हमने कुछ 33 सत्रों में इसकी चर्चा करी कि भगवान का जन्म वो क्यों और कैसे दिव्य है। तो यदि भगवान का जन्म दिव्य हो गया तो भगवान के कर्म भी फिर दिव्य होने चाहिए। ये लॉजिक ठीक बैठता है। अब हमारे संदर्भ में हमारा जन्म, इसके विषय में बताया गया है कि हमारा जन्म अज्ञ, जैसे भगवान का जन्म दिव्य, हमारा जन्म अज्ञ, कुछ पता नहीं हमें कि हम कौन से समय जन्मे थे, कहां जन्मे थे, बताना पड़ता है बाद में हमें। हमें बाद में बताया गया कि तुम यहां जन्मे, इस समय जन्मे, तुम ऐसे जन्मे, ये तुम्हारा नाम, सब कुछ बताना पड़ा। इसके ठीक विपरीत भगवान जन्म लेते ही, अब देखिए, भगवान जन्म लेते ही सबसे पहले तो अपने आयुधों के साथ, कोई भी यदि एक उंगली एक्स्ट्रा के साथ पैदा हो जाए, किसी को अगर एक उंगली, छह उंगली आ गई तो वो भद्दा लगता है ना। छह उंगली वाला शिशु नॉर्मल नहीं, भद्दा लगता है। अब भगवान देखिए कि कितनी उंगलियां एक्स्ट्रा, दो हाथ एक्स्ट्रा है। तो यदि दो हाथ एक्स्ट्रा है तो कितनी उंगलियां एक्स्ट्रा हो गई, 10 उंगलियां एक्स्ट्रा। परंतु भगवान जब ऐसे, यदि हम भौतिक भाषा में उसे कहें कि विचित्र रूप से पैदा होते हैं, तो भगवान के उस विचित्र रूप को अद्भुत कहा जाता है। हमारे संदर्भ में विचित्र, भगवान के संदर्भ में अद्भुत। बालों के साथ, कोई बालों के साथ पैदा होता है, और वो भी, उनका नाम है केशव। केशव का अर्थ है जिनके केश बहुत सुंदर हैं, ऐसे केश, ऐसे आयुध, ऐसे अस्त्र शस्त्र, ऐसे ऐश्वर्यों के साथ और आदेश देते हुए जो पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही उनके कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात भगवान का जन्म लेना अपने आप में उनका एक दिव्य कर्म है। जन्म लेना अपने आप में एक दिव्य कर्म है। तो इसलिए यदि हम देखें, भगवान अपने स्वयं के आनंद के लिए स्वांतः सुख या निजा आनंद उसे यदि कहें, तो उसके लिए भगवान जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं। परंतु दिव्य ये शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया। और जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान धर्म की स्थापना हेतु राक्षसों का संहार, साधुओं का उद्धार इत्यादि, ये सब कारणों के वजह से भगवान जब जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, तो उसमें भी भगवान की दिव्यता दिखती है। अब हमारे शास्त्रों में यदि हम केवल श्रीमद् भागवत लें, तो श्रीमद् भागवत में जो दश अवतार भगवान के बताए गए, अब इन दश अवतारों में भगवान ने जो ऐसे विभिन्न प्रकार के अपने कर्म कर कर दिखाए, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरहरि, वामन इत्यादि, तो इन सब, और ये तो केवल जो थोड़ा बहुत श्रीमद् भागवत में समय था सुखदेव गोस्वामी के पास परीक्षित महाराज को सुनाने के लिए, तो संक्षिप्त रूप में कुछ एक अवतारों का वर्णन उन्होंने किया। परंतु भगवान के कितने अवतार और उसमें कितने कर्म बताया गया है कि जैसे समंदर की लहरें होती हैं, कोई गिन नहीं सकता। और ये बताया गया है कि यदि कोई समंदर की लहरों को गिन भी ले, तो भी भगवान के कितने अवतार और उसमें कितने भगवान के दिव्य कर्म कोई आज तक न गिन पाया है, न कभी गिन पाएगा। तो यदि हम कुछ अवतारों को लें जिनमें भगवान के ऐसे अद्भुत कर्म उन्होंने किए, जैसे मत्स्य अवतार, अब ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं और भगवान इस भौतिक संसार में आकर जब जो जीव योनियों में भ्रमण करता है, 84 लाख योनियों में जो जीव भ्रमण करता है, जब भगवान उन योनियों में अपने अवतार लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, मछली, तो मछली का रूप भगवान ने लिया। अब मछली के रूप में भगवान दोनों चीज दिखाते हैं। भगवान ये भी दिखाते हैं कि एक मछली जो साधारणतः कैसे कार्य करती है, साधारणतः मछली के कार्य कैसे होते हैं, ये भगवान दिखाते हैं हूबहू, जैसे कि वो मछली कैसा व्यवहार करती है, भगवान उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। हाउ अ फिश विल बिहेव, दैट्स हाउ मत्स्य अवतार बिहेव। तब कोई कहे तो फिर भगवान में और एक मछली में क्या अंतर है, भगवान में और मछली में क्या अंतर है, क्या अंतर है? ये जो मत्स्य अवतार भगवान ने लिया, आप जानते हैं ये मत्स्य अवतार कितना विशाल था, 80 लाख मील लंबी मछली, 80 लाख मील लंबी ये मछली। तो भगवान यदि कोई पशु का अवतार भी लेते हैं तो उसके अंदर अपना अद्भुत पराक्रम दिखाते हैं। तो दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, उस मछली की तरह व्यवहार भी, ताकि यदि मत्स्य अवतार नाम मिला है तो मत्स्य की भूमिका ठीक से निभाएं। अब कूर्म अवतार, यदि हम कूर्म अवतार को देखें तो ये कूर्म अवतार भी कोई साधारण कूर्म, कूर्म अर्थात कछुआ, कोई साधारण कछुआ नहीं। भगवान जब अवतरित हुए कूर्म के रूप में तो जो शेल होता है, पीठ होती है इस कछुए की, बादलों में वो पीठ का भाग बादलों में जा रहा, तो थोड़ी बहुत कल्पना आप कर सकते हैं कि यदि कोई ऐसा कछुआ जिसकी पीठ बादलों में जा रही हो तो वो कछुआ कितना विशाल होगा। और फिर भगवान ने ये अवतार लिया समुद्र मंथन में, जब वो मंदराचल पर्वत वो फिसल रहा था, वसुकी को रस्सी बनाए हुए वो लोग जब मंथन करे तो वो फिसल रहा, तो इसलिए आधारशिला, नीचे आधारशिला चाहिए, इसलिए भगवान अपनी पीठ दिए कछुए के रूप में। तो अब ये तो वो जो दैत्य और देवता उनके लिए सहायता के रूप में भगवान ने एक आधारशिला दी उनको, परंतु हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान कछुए के रूप में अपने पीठ खुजलाना चाहते थे। तो पीठ खुजलवाने के लिए भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ में रगड़वाया। तो अब देखिए, साधारणतः पीठ खुजलवाना अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि वहां तक हाथ पहुंचता नहीं, तो क्या क्या यंत्र निकालते हैं, वो लंबा लंबा कुछ ऐसे इधर इधर करते रहते हैं, या किसी को बोलते हैं भैया थोड़ी पीठ खुजलवा दे। तो भगवान को जब खुजली आती तो देखिए, अभी कौन शख्स है कि जिसकी खुजली के विषय में इतना सब कुछ मेंशन होगा किसी ग्रंथ में। बुधवार के कार्यक्रम में कितनी बार कर लिए होंगे आप, परंतु हमारे अमित देसाई प्रभु का कैमरा नहीं जाएगा आप जब खुजलवा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी और वो उसका कोई श्लोक भी नहीं बनेगा कि आज बुधवार के कार्यक्रम में फला फला जो बुधवार के कार्यक्रम अटेंड करने आए थे उन्होंने इस सलीके से अपने आप को खुजलवाया, नहीं। परंतु भगवान जो भी कुछ करते हैं वो अप्रतिम होता है, ये कहा गया। ये एक और भगवान का अवतार, वराह अवतार। अब देखिए, ठीक है कोई कहे मछली या फिर कछुआ, यहां तक ठीक है, ये तो एक सुअर, सुअर के रूप में, परंतु भगवान जब सुअर के रूप में भी आते हैं ये दिखाने के लिए कि यदि सुअर को सबसे गर्हित पशु माना गया है, परंतु मैं जब सुअर के रूप में आऊंगा, केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, भगवान का गुणगान होता है, भगवान की सुंदरता का गुणगान होता है, और बहुत सुंदर बिल्व मंगल ठाकुर एक श्लोक में वराह देव के विषय में कहे हैं, वराह देव के विषय में और वराह देव से संबंधित भगवान श्री कृष्ण के विषय में, तो बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले ये जान लें कि वराह देव वो कितने विशाल थे, और फिर उसकी तुलना में भगवान श्री कृष्ण, यशोदा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, उनका गुणगान क्या हुआ। यद रोमरंध्र परिपूर्ति विधाव दक्ष वाराह जन्मनि बबूह रमी समुद्र यम नामनाथ अरविंद दृशम यशोदा पाणिर्द्वयंतम जलैर स्नपयाम बबूह। इस सुंदर श्लोक में बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, यद रोम रंध्र परिपूर्ति विधाव दक्ष, रोम छिद्र वराह देव भगवान का एक रोम छिद्र कितना बड़ा था कि इस पूरी सृष्टि के जितने सरोवर हैं, समंदर हैं, नदियां हैं, उन सब का पानी आप लो और वराह देव के एक रोम छिद्र में डालने का प्रयास करो, इतना पानी। फिर भी उनका रोम छिद्र, एक रोम छिद्र वो भरेगा नहीं। यद रोम रंध्र परिपूर्ति विधा व दक्ष वाराह जन्मनि बभूह रमी समुद्र, ये सारे समंदर डाल दो, परिपूर्ति न नहीं भरने वाला। और फिर बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं बहुत सुंदर तरीके से, तम नाम नाथ अरविंद दृशम यशोदा, ये वराह देव जो कि भगवान श्री कृष्ण के अवतारों के अंश अवतार के एक अवतार, ये वराह देव। और वो भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला कर रहे थे वृंदावन में यशोदा नंदन बनकर, तो यशोदा मई ये भगवान श्री कृष्ण जो कि वराह देव के स्रोत हैं, इनको एक बाल्टी से निला देती थी। तो ये हैं वराह देव। अब देखिए इस संसार में आजकल बच्चे जो हैं वो कितना प्रभावित होते हैं ये कार्टून चैनल से, कितने कार्टून चैनल से प्रभावित होते हैं कि उन्हें वो क्या मिकी माउस, मिकी माउस का कैरेक्टर, डोनाल्ड डक, टॉम एंड जेरी, ये सब कैरेक्टर्स उनको। परंतु भगवान जब ऐसे कैरेक्टर्स लेकर आते हैं, वराह देव, कूर्मावतार, मत्स्य अवतार इत्यादि, हंस अवतार, जब ये सब बनकर आते हैं तो भगवान कोई कार्टून नहीं लगते। ये सबको क्या कहा जाता है, ये डोनाल्ड डक, मिकी माउस, ये सब ये हास्य के लिए, इनको कार्टून बोला जाता है। परंतु भगवान जब अवतरित होते हैं इन रूपों में तो ये भगवान के अद्भुत रूप कहे गए हैं, ये हमारे कार्टून नेटवर्क बंद करने के लिए। भगवान का एक और बहुत ही सुंदर अवतार हुआ हंस अवतार। एक पुराण में बताया गया है कि ये सब तो कुछ एक ऐसे लिस्ट हैं जो कि कई जो विद्वान उन्होंने हमारे अनुसार उनको लिखित रूप में दिया है, परंतु भगवान ने हर एक योनि में अवतार लिया। भगवान यहां तक कि मच्छर योनि में मच्छ अवतार हो सक उसको बोल सकते हैं आप, मच्छर बने हैं भगवान। और अब इसी महीने हम मनाने वाले हैं, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, नरसिंह अवतार। अब कोई भी कार्टून नेटवर्क देखने वाला यदि उसे ये लग रहा है कि चलो थोड़ा हंस लें, तो भगवान हंसाते भी हैं, ये नहीं कि भगवान हंसाते नहीं है, उस प्रकार का मनोरंजन नहीं। परंतु नरसिंह अवतार भगवान का एक ऐसा अवतार है कि सारे सुपरमैन, बैटमैन, हीमैन सबको लाइन में खड़ा कर दो, सबकी नानियां याद दिला देंगे उनको। ये हैं भगवान श्री नरसिंह देव। और आधे नर आधे सिंह। अब इसमें देखिए नरसिंह अवतार में भगवान ने अपनी ये दोनों रूप की भूमिकाएं निभाई, कि सिंह के रूप में जैसे कि सिंह कैसे गरजता है, सिंह कैसे चिंघाड़ता है, तो वैसे हूबहू सिंह की तरह। और नर, नर के रूप में आए तो कैसे एक नर व्यवहार करेगा, एक मनुष्य व्यवहार करेगा, तो दोनों का समन्वय। जैसे भरत मुनि मुनि हुए जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि लिखते हैं कि मैंने जो भी ये नाट्य की कला लिखी, परंतु नरसिंह भगवान ने जो नाट्य कला प्रदर्शित करी आज तक कोई नट नहीं कर पाया, न कर पाएगा। नट अर्थात जो अभिनेता होता है, जो ड्रामेटिस्ट होता है, वो एक्टर। तो कैसे, जब नरसिंह भगवान अवतरित हुए तो पूर्ण क्रोध में, इतना क्रोध उनके अंदर कि लक्ष्मी देवी जो कि उनकी धर्मपत्नी है, लक्ष्मी देवी वो पहचान नहीं सकी अपने पति को। इतना क्रोध कि लक्ष्मी देवी ने कहा कि मैंने अपने पति को क्रोधित देखा है, क्रोधित भी देखा, परंतु ऐसा क्रोध आज दिन तक मैंने नहीं देखा। इसलिए रुक्मिणी देवी, दशम स्कंद में रुक्मिणी देवी जब वो अपना प्रेम पत्र भेजती है भगवान श्री कृष्ण को, फर्स्ट लव लेटर, तो अपने प्रेम पत्र में रुक्मिणी देवी वो अलग अलग कारण दे रही हैं कि क्यों हे कृष्ण आपको मुझसे ही विवाह करना चाहिए। तो बहुत सुंदर है वो श्लोक जिसमें उन्होंने ये उनकी उत्प्रेक्षाएं लिखी हैं। उसमें मुझे याद आ रहा है रुक्मिणी देवी कहती हैं कि हे कृष्ण, आप यदि ये सोच रहे हो कि मुझसे विवाह कर, क्योंकि अब तक भगवान ने विवाह नहीं किया था, सबसे पहले रुक्मिणी से किया, तो अब तक बैचलर भगवान, तो इसलिए रुक्मिणी देवी उस पत्र में ये लिखती हैं कि हे बैचलर कृष्ण, आप यदि ये सोच रहे हो कि शादी करने के बाद मैं आप पर हावी हो जाऊंगी या आपको जोरू का गुलाम बनना पड़ेगा, अक्सर हो जाता, यदि आपको ये लग रहा है कि ये कुछ हो जाएगा, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप जो नरसिंह बने थे, बहुत शास्त्र का भी ज्ञान था रुक्मिणी देवी को, तो उन्होंने कहा आप जो नरसिंह बने थे तो आपकी स्वयं की पत्नी लक्ष्मी वो थर थर कांपते हुए पहचानने से इनकार कर दिया, आपको पहचानने से इनकार कर दिया, तो इसलिए आप बिल्कुल घबराइए मत कि विवाह करने के पश्चात आपको कोई कंट्रोल कर पाएगा, नहीं, आपको कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए और आप मुझे स्वीकार कीजिए पत्नी के रूप में। तो बहुत सुंदर रुक्मिणी देवी कहती हैं। अब यहां नरसिंह भगवान वो, हाँ, तो मैं भरत मुनि के विषय में कह रहा था कि नाट्य शास्त्र जिन्होंने लिखा, तो उन्होंने कहा है कि नरसिंह भगवान इतने क्रोध में जो अवतरित हुए हैं खंभे से, अब उग्र नरसिंह उनका नाम भी एक, तो प्रहलाद महाराज हैं वहां पे और हिरण्यकशिपु, तो एक आंख से वो हिरण्यकशिपु को क्रोध भरी नजरों से देख रहे हैं और अपनी एक आंख से प्रहलाद महाराज को प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं। तो टीकाकार कहते हैं कि भरत मुनि के पूरे नाट्य शास्त्र में आज तक ऐसा कोई नट न बना, न बनेगा, कोई ऐसा एक्टर, चाहे आप बॉलीवुड ले लो, हॉलीवुड ले लो, टॉलीवुड, लॉलीवुड, जो भी ले लो, कहीं पर भी ऐसा कोई एक्टर नहीं बना जो कि एक आंख से क्रोध का इमोशन दिखाए और दूसरे आंख से करुणा का इमोशन दिखाए। तो प्रहलाद महाराज के लिए करुणा का इमोशन एक आंख से, अब इसमें ये कहते हैं, ये समझना नहीं चाहिए कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है कि उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तो नरसिंह भगवान, इसलिए हम नरसिंह आरती में क्या गाते हैं, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम, कि उन्होंने अपने नखों से, नख से उन्होंने चीर फाड़ किया हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु उसके विषय में बताने जाएं तो वो अपने आप में एक बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति, वज्र के समान जिसका शरीर, ये हिरण्यकशिपु को जैसे एक चटाई वाला चटाई की सीख को दो भाग में कर देता है, वैसे भगवान ने चीर फाड़ किया हिरण्यकशिपु का। तो वही नख और तव कर कमल, कमल बताए गए हैं नरसिंह भगवान के कर को, कमल अर्थात जो सबसे मुलायम जो पुष्प होता है वो है कमल का पुष्प, कमल की पंखुड़ियां। तो प्रहलाद महाराज के सर पर जब नरसिंह भगवान अपना हस्त रखते हैं तो कमल के समान, इसलिए उनके विषय में कहा गया है वज्रादपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम, कि भगवान कैसे हैं कि एक साथ उनके हाथ दोनों काम करते हैं, वज्र से भी ज्यादा कठोर और कुसुम से भी ज्यादा कोमल। तो ये नरसिंह भगवान, अब ठीक विपरीत ये हैं भगवान बुद्ध, अहिंसा के प्रतीक। तो नरसिंह भगवान जो कि प्रकट हुए और होते ही उन्होंने केवल क्या प्रदर्शित किया, हिंसा, और वही भगवान श्री विष्णु के ये अवतार भगवान बुद्ध जो कि अहिंसा के प्रतीक। तो इनके विषय में इनके जीवन की एक कथा है भगवान बुद्ध के, कि वो एक ऐसे प्रांत पहुंचे जो कि एक डकैत से वो पूरा प्रांत पीड़ित था, और ये ऐसा डकैत जो कि बिना कारण लोगों को लूट लेता, मार डालता उनको, बलात्कार इत्यादि जो कुछ सारे गर्हित कार्य ये किया करता। और वहां पर भगवान बुद्ध पहुंचे और इसे बहुत घमंड था क्योंकि सब इससे डरा करते थे, थर थर कांपते थे, तो इसका बहुत घमंड था इसे। तो जब भगवान बुद्ध वहां पर पहुंचे तो वो मिलना चाहते थे, पता चला उनको जब कि ऐसा हिंसक व्यक्ति, और ये स्वयं अहिंसा के प्रतीक, अहिंसा परमो धर्म। तो सभी ने कहा कि नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं, आप जो साधु हो आप तो बिल्कुल नहीं, उसके आसपास भी मत फटकना। परंतु भगवान बुद्ध मिलना चाहते थे, तो उन्होंने कैसे, तो वो जहां पर जंगलों में रहा करता था वहां पहुंचे, और जब ये पहुंचे और इन्होंने अपना परिचय दिया कि मुझे मिलना है, तो ये व्यक्ति इंप्रेस हुआ पहले तो, कि आज दिन तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि खुद से मुझसे आके मिले, क्या है इस साधु के अंदर, ये इतना निडर कैसे है। तो भगवान बुद्ध इसे कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम बहुत हिंसक व्यक्ति हो और तुम अपने आप को बहुत पराक्रमी शूरवीर मानते हो। इसने कहा हाँ ठीक सुना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई शूरवीरता है या पराक्रम करने की शक्ति है। ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कार्य देता हूं, उसे करके बताओ। ये जो पेड़ पे पत्ते हैं इसमें से एक पत्ता तोड़ कर लाओ। अब इसके लिए इंसल्ट था कि मैं ये पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूं, मैं तुम्हें अभी इसी क्षण खत्म कर सकता हूं, उसने कहा, और तुम मुझे कह रहे हो कि एक केवल पत्ता तोड़ कर लाओ। इन्होंने कहा तोड़ कर तो लाओ। वो पत्ता तोड़ कर लाता। तो अब भगवान बुद्ध कहते हैं अब ऐसा करो, फिर से इसे उसी टहनी पर जाकर जोड़ दो जहां से तुम तोड़कर लाए थे। तो ये सोच विचार करने लगा, ये तो असंभव है, या तो ये व्यक्ति पागल है मुझे पागल बना रहा है। तो भगवान बुद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे अंदर केवल तोड़ने की शक्ति है, तो जिसके अंदर केवल तोड़ने की शक्ति हो वो पराक्रमी नहीं कहा जा सकता। पराक्रमी व्यक्ति वो है, शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो तोड़ने के साथ साथ जोड़ने की शक्ति भी रखे। तो तुम, हां, एक पत्ते को तो तोड़कर लाए परंतु फिर तुम उसे नहीं जोड़ पाओगे। और फिर उन्होंने कहा कि मैं यहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कैसे चीजों को जोड़ता हूं। और फिर भगवान ने इस व्यक्ति के सामने एक बीज को बोया और उस बीज से पौधा, और उस व्यक्ति के आंखों के सामने वो पौधा एक वृक्ष में परिणित हुआ और उस वृक्ष में टहनियां और इतने सारे पत्ते, फूल, फल इत्यादि। भगवान ने कहा इसे कहते हैं शक्ति, इसे कहते हैं पराक्रम। तो नरसिंह भगवान, वो भी भगवान के एक ऐसे पूर्ण अवतार हैं, और भगवान बुद्ध भी भगवान के ऐसे पूर्ण अवतार हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब देखिए रामचंद्र जी विशेष, हर एक अवतार जो है उनकी एक प्रमुखता, उनकी एक विशेषता उन्होंने दिखाई है। जैसे हमने देखा मत्स्य अवतार, कूर्म, वराह, नरसिंह, बुद्ध, अब यहां पर रामचंद्र जी वो एक मनुष्य लीला करने हेतु अवतरित हुए, और उदाहरण उन्होंने एक मनुष्य क्या क्या अलग अलग प्रकार के रोल निभाता है, एक पुत्र का जो वो अभिनय निभाता है, एक पति का, एक भाई का, एक पिता, एक राजा, एक मित्र, ये सब एक मनुष्य यदि इन सब अलग अलग रोल से गुजरता है तो कैसे वो उसे बखूबी निभाए। शास्त्र आधारित और आदर्श उदाहरण। अब देखिए रामचंद्र जी जो कि मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो सीता मैया के साथ उन्होंने सीता मैया को स्वयंवर में जीता। स्वयंवर में जीतने के पश्चात उन्होंने उनके साथ विवाह किया। अब विवाह करने के पश्चात जैसे कि एक दंपति रहते हैं वैसे वो अपने धर्म पत्नी के साथ रहने लगे। और फिर हम जानते हैं कि रामायण में जैसे अपहरण हुआ सीता का, तो सीता के लिए वो विलाप कर रहे हैं। तो जब सीता के लिए वो विलाप कर रहे थे तो भगवान शिवजी वो प्रभु श्री राम की इस विलाप या वियोग की लीला को देखकर वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तो पार्वती देवी, उन्होंने अपने पति को प्रसन्न देखा और पूछा कि कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि मेरे आराध्य देव, हमारे आराध्य देव वो ये कैसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। तो पार्वती देवी, उन्होंने कहा मैं भी देखना चाहती हूं। तो जब पार्वती देवी ने देखा रामचंद्र जी वियोग में हैं अपनी पत्नी के, और कोई साधारण सा वियोग नहीं है, प्रभु श्री राम जब सीता के वियोग में वन वन भ्रमण कर रहे थे तो वो कोई ऐसा नहीं कि वो इत्मीनान से कहीं पे बैठ के थोड़ा रो लिए, फिर थोड़ा खा लिए, फिर थोड़ा सो लिए, फिर लक्ष्मण से पूछे कुछ पता चला, नहीं, चलो ठीक है, थोड़ी शांति मिली, नहीं, वो पेड़ों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, फूलों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, वो सबसे पूछ रहे हैं पागलों की तरह। तो पार्वती देवी ने जब ये देखा, पार्वती देवी सोचने लगी कि अरे भाई ये तो कोई साधारण पति भी इतना नहीं पत्नी के पीछे भागता, और ये बोलते हैं, मेरे पति बोलते हैं कि ये उनके आराध्य हैं। नहीं नहीं, मेरे पति को शायद कोई भ्रम हो गया है, उन्हें ठीक से पता नहीं चल रहा। तो वो टेस्ट करना चाहती थी कि ये सही में भगवान हैं कि नहीं। तो वो क्या करती हैं, पार्वती देवी क्या करती हैं, भेष बदल कर आती है, सीता का भेष बदल कर सीता के रूप में आती हैं। और सीता के रूप में जहां पर रामचंद्र जी अब वियोग लीला में हैं, सीता देवी के विषय में यहां वहां सबसे पूछ रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तो उसी वन में रामचंद्र जी के सामने जाने का प्रयास कर रही है, एकदम एग्जैक्टली सीता देवी जैसी दिख रही है। और रामचंद्र जी इनको देखने के बाद यहां वहां जैसे कि अनदेखा कर दिया और वो अपने वियोग लीला में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पार्वती को लगा कि क्या इनको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, तो एकदम सामने आ गई हूं, चलो थोड़ा इनडायरेक्टली मैं यहां वहां घूम रही थी, डायरेक्टली सामने, तो सामने आ गई। तो अब जैसे ही आमना सामना हुआ भगवान श्री राम का और पार्वती जो कि सीता के रूप में है, तो प्रभु श्री राम दंडवत किए और पूछे कि हे भवानी, हे माते, आज भोलेनाथ साथ नहीं आए। अब जैसे ही पार्वती ने ये सुना तो थर थर कांपने लगी, थर थर कांपने। तो भगवान एक दंपति कैसे रहते हैं, जैसे यहां पर ही जनस्थान पासी में, तो जनस्थान में ये लीला हुई कि जब अब वनवास उनको प्राप्त हो चुका है तो जनस्थान यहां पर पहुंचे, चित्रकूट से फिर यहां पर आए, तो जनस्थान जब सूर्पणखा का हो गया था, उसका नाक और कान काट दिया गया, सूर्पणखा यहां से चली गई, खर दूषण को रिपोर्ट किया, फिर रावण को जाकर ये सब कुछ चल रहा था, तो उसके बीच एक दिन हुआ क्या, सीता देवी वो रामचंद्र जी के साथ बैठी हुई, और रामचंद्र जी हर समय अपना धनुष साथ में रखते थे, तो सीता पूछती हैं, मुझे बताइए ये जो आप हर समय इसको हाथ में लिए रखे हो, आता चला ना, कभी देखा नहीं आपको चलाते हुए। अब देखो जैसे कि मैं ये बता रहा हूं कि कैसे मनुज लीला भगवान कर रहे हैं, तो सीता देवी ने जब ये पूछ लिया कि चलाना आता है, अब इज्जत का सवाल, पत्नी ने पूछ लिया चलाना आता है, तो रामचंद्र जी अब कैसे बताएं कि चलाना क्या, क्या कुछ नहीं आता मुझे, लेकिन अब कैसे समझाएं। तो भी उसी दौरान ये खर दूषण और 14,000 सैनिक उसके आक्रमण किए, सुरपणा ने जाके रिपोर्ट किया तो ये आ गए लड़ने के लिए, तो जैसे ही समाचार मिला कि ये खर दूषण 14,000 सैनिक आए हैं राक्षस लड़ने के लिए, तो लक्ष्मण वो पहले सामने आए कि मैं खत्म करता हूं, और लक्ष्मण बहुत बहुत समय हो गया था, लक्ष्मण ने भी कुछ ऐसा किया नहीं था कि वो मारधाड़, क्योंकि क्षत्रिय हैं तो ये सब कुछ उनको बहुत एक्टिव रखते हैं सारी चीजें। तो रामचंद्र जी सामने आए, लक्ष्मण को, लक्ष्मण तू पीछे हट, मैं लड़ता हूं इनसे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु भैया आपके लिए नहीं है, ये आपके स्टैंडर्ड के नहीं है ये राक्षस, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जमा लूंगा, ये आपके स्टैंडर्ड के नहीं। रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं बोल रहा हूं मैं मारूंगा इनको। तो लक्ष्मण बार बार आग्रह करते, नहीं प्रभु मेरे होते हुए आप क्यों, नहीं तो फिर मेरे आने का फायदा क्या यहां पर। फाइनली रामचंद्र जी ने बोला देखो ये फैमिली मैटर है मेरा, हाँ तुम तो लक्ष्मण पूछते फैमिली, मैं भी तो फैमिली, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी फैमिली नहीं है यहाँ, ये फैमिली मैटर है, इज्जत का सवाल है, दूर हटो। और रामचंद्र जी फिर सीता को दिखाते हुए जा रहा हूं मैं, और एक घंटे में उन्होंने 14,000 इन राक्षसों का वध किया और एक बूंद पसीना नहीं गिरा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, एक बूंद पसीना नहीं गिरा। तो भगवान जब एक दाम्पत्य जीवन की भूमिका निभाते हैं तो उस भूमिका को भी कितना बखूबी निभाते हैं, ये दिखाने के लिए कि जो दंपति हैं उन्हें किस प्रकार का आदर्श स्थापित करना है। अब ये अलग बात है कि लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि पति को परमेश्वर क्यों मानना चाहिए, कौन से इसमें, चाहे वो है ना, एक व्यक्ति वो बार बार ये गाना गुनगुना रहा था घर पर, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, बार 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 ये गाना उस गुनगुना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो पत्नी ने सुना सुबह से ये लाइन गुनगुना रहे हैं ये, तो ऑब्वियसली पत्नी के लिए गुनगुना रहे। तो पत्नी जब भी रसोई घर से बाहर आती, आमना सामना होता, तो ये बोलते तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो फाइनली फिर शाम के समय इतनी बार सुन लिया ये लाइन, तो पत्नी कहती है क्या करना है, जब भी मुझ में रब दिखता है मत्था टेको 1,000 का नोट डालो, चढ़ावा लगाओ 1,000 का, रब दिखता है ना। तो यहां तो स्वयं रब वो पति बने हैं। सीता देवी ये नहीं कह रही थी कि तुझ में रब दिखता है, नहीं, स्वयं साक्षात रब है। तो ये प्रभु श्री राम जिन्होंने मनुज लीला और फिर हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र भगवान, जयति जयति देवो देवकी नंदनोयम, जयति जयति वृष्णी वंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद। बहुत सुंदर ये प्रार्थना है महाराज कुलशेखर की, जिसमें वो जयति जयति देवो देवकी नंदन हो यम, कि वो देवकी नंदन उनके उनका जयकार हो। क्यों? क्योंकि वो वृष्णि वंश के प्रदीप बनकर आए, हालांकि देवकी नंदन परंतु वृष्णि वंश के प्रदीप बनकर आए, और जिनके अंग ऐसे सुकोमल अंग, मेघ श्यामल कोमल अंगो, ऐसे कोमल भगवान श्री कृष्ण के अंग इतने कोमल थे, गोपियां कहती हैं, क्योंकि भगवान बिना पादतरण जाते थे गाय चराने, कोई फुटवेयर कुछ नहीं पहनते थे, ऐसे ही निकल जाते थे नंगे पैर। तो गोपियां जैसे ही भगवान को नंगे पैर निकलता देखती तो गोपियां पूरे दिन भर इस चिंता में रहती कि पता नहीं कितने नोकीले कंकड़ चुभ रहे होंगे हमारे कृष्ण के तलवों पर। और जाते हुए जब वो देखती तो वृंदावन के कुछ ऐसे कंकड़ जो कि एकदम महीन और इतने वो श्वेत वर्ण के, तो उनके ऊपर भगवान के चरण जब लगते, छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर जब भगवान के चरण लगते तो भगवान के तलवों की लालिमा से ये जो पत्थर हैं वो ऐसे लाल लाल दिखते। तो गोपियां, उनको पहले लगता कि शायद भगवान के तलवों पर जो कुमकुम लगा हुआ है उसके वजह से ये पत्थर लाल लाल दिख रहे हैं। तो वो भगवान के पैरों को धोकर भेजती तब भी वो दिखता, तो तब उन्हें समझ में आया कि भगवान के चरण ही, भगवान के जो तलवे हैं वो तलवे ही जो पिंक कलर के हैं, तो उसका रंग उनके ऊपर लग रहा है, उन पत्थरों के ऊपर लग रहा है। तो इतने सुकोमल अंग के भगवान श्री कृष्ण, और फिर महाराज कुलशेखर कहते हैं कि ऐसे सुकोमल अंग के भगवान पृथ्वी भार नाश मुकुंद, कि पृथ्वी का भार लिए हुए और मुकुंद मुक्ति प्रदान करने के लिए जो अवतरित होते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। तो हम देखते हैं कि ये सारे जो भगवान के प्रमुख अवतार, इन अवतारों में भगवान ने जो अद्भुत लीलाएं की, कर्म उनके जो हैं अद्भुत कर्म, वो ऐसे हैं कि हमने केवल एक एक अवतार का एक आपको नमूना प्रस्तुत किया है केवल। तो भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य कर्म हैं वो क्यों दिव्य है, तो इसे हम संक्षिप्त रूप में समझना चाहेंगे। सबसे पहले अलौकिक, भगवान के कर्मों को दिव्य इसलिए बताया गया है क्योंकि उनके कर्म अलौकिक हैं। इसके पश्चात भगवान के कर्मों को दिव्य इसलिए बताया गया है कि उनके कर्म अद्भुत हैं। और तीसरा कारण है कि भगवान के कर्म दिव्य हैं क्योंकि अचिंत्य। तो अलौकिक, अद्भुत और अचिंत्य, ये सरल रहेगा समझना। तो तीन मुख्य कारण हैं। अब यदि हम अलौकिक, अलौकिक का अर्थ है जो इस लोक से परे, तो ये लोक और अलौकिक या परलोक। तो अब देखिए कि इस संसार में जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसको कहा जाता है लौकिक या वर्ल्डली इंग्लिश में। तो यदि इसकी लिस्ट निकाल लें कि हमारे जो एक्शंस हैं या हमारे जो कर्म हैं वो कैसे लौकिक हैं, और इसका ठीक विपरीत हम लॉजिक लगा लें, तो भगवान यदि आए भी इस लोक में तो उनके कर्म हमारी तरह लौकिक नहीं होते। सो व्हाट मेक्स अवर एक्शंस वर्ल्डली एक्शंस, क्यों हमारे कर्मों को लौकिक बताया गया है? सबसे पहला कारण, दैट इट इज मेंट फॉर अवर सर्वाइवल। अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टिता इति कर्म, कर्म की परिभाषा दी गई है कि कर्म किसे कहते हैं, हमारे अंदर अपूर्णताएं हैं और उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हमें जो इतने भाग दौड़ कर कर्म करना पड़ता है। जैसे कि जब हमें अगर गर्मी लग रही है तो अपने आप हम हमारे अंदर से ठंडक पैदा नहीं कर सकते कि चलो गर्मी लग रही है अपने आप अंदर से ठंडा हो जाओ, या भूख लग रही है तो अपने आप बिना प्रयास करे ये जो अपूर्ण पेट है पूर्ण नहीं होगा। हमें अगर छत चाहिए हमारे ऊपर, वस्त्र चाहिए, जो कुछ हर एक छोटे मोटे कार्य के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है, और बिना किए उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी थी तो पत्नी पति से कहती है कि मैं सोच रही हूं गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारे साथ मैं अमेरिका चलूं। वो ऑफिशियल टूर पर जा रहा था तो इसने कहा मैं सोच रही हूं कि मैं तुम्हारे साथ अमेरिका चलूं गर्मियों की छुट्टियों में। वो पेपर पढ़ रहा है सुन रहा है, पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है। उसने कहा अच्छा हाँ, और मैंने ये भी सोचा है कि दिवाली की छुट्टियों में तुम जब यूरोप जाने वाले हो, तुमने कहा, तो मैं सोच रही हूं कि दिवाली की छुट्टियों में मैं यूरोप जाऊं, गर्मियों की छुट्टियों में मैं सोच रही हूं अमेरिका, दिवाली की छुट्टियों में सोच रही हूं यूरोप। अब बताओ कितना खर्चा लगेगा। तो इसने पेपर पढ़ते पढ़ते कहा भाग्यवान, खर्चा बिल्कुल नहीं, कुछ खर्चा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं, कुछ खर्चा नहीं, ऐसे कैसे। इसने कहा क्योंकि तुमने कहा तुम सोचने वाले हो ना, सोचने का खर्चा नहीं लगता। तो इस संसार में यदि हम सोचें, मैं सोच रहा हूं कि आज बिना लाइन में खड़े पेट भर जाएंगे, नहीं होगा कुछ भी। परंतु भगवान के कर्म अलौकिक हैं, क्योंकि उन्हें उनके भरण पोषण के लिए, इसलिए प्रभुपाद एक बार एक प्रवचन में कहे, सो कृष्णा वॉज द्वारकाधीश, ही हैड 16,108 क्वींस एंड 16,108 पैलेसेस फॉर ईच क्वीन, एंड कृष्णा डिंट हैव टू गो टू ऑफिस फ्रॉम 9 to 5 टू मेंटेन। भगवान को एक एक कोई लोन लेके पैलेस नहीं बनाए थे द्वारका में, ईएमआई भर रहे हैं हर महीने का, नहीं। सो हिज एक्शंस आर अलौकिक बिकॉज इट इज बियॉन्ड सर्वाइवल। अवर एक्शंस आर ऑब्लिगेटरी। बहुत से ऐसे ऐसे कर्म होते हैं जो करने पड़ते हैं हमें, हमारे ऊपर उसका ऑब्लिगेशन होता है कि हाँ भाई, किसी की शादी हो चुकी है, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, फिर भी दूसरों की शादी में जाना पड़ता है और सज धज के जाना पड़ता है और बधाइयां देनी पड़ती हैं कि तुम भी हो जाओ शुरू। तो कितने सारे ये ऑब्लिगेटरी एक्शंस होते हैं कि ये करने पड़ते हैं, विशेष रूप से हम मनुष्यों को। फिर लौकिक कर्म किसको कहते हैं? दोज एक्शंस विच आर इनवॉलंटरी, कि वो हमारे हाथ में नहीं है। छींकना, खांसना, मलमूत्र त्याग करना, ये सारे जो बॉडीली एक्शंस अलग अलग प्रकार के हैं जो कि इनवॉलंटरी है, कोई नहीं कह सकता कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूं और मैंने कंट्रोल कर लिया है सब कुछ। और फिर सुबह का समय, हमारे हम लोग जब पहली दफा गए थे अमेरिका, तो गौरांग प्रभु वो रोज योगा करते हैं, वो योगा कर रहे थे और राधानाथ महाराज आए, तो जिस कमरे में वो योगा कर रहे थे, तो राधानाथ महाराज आए, तो पहली दफा देख रहे हैं इनको योगा करते हुए, तो इन्होंने सोचा चलो महाराज देख रहे हैं तो थोड़ा अच्छे अच्छे आसन अभी करता हूं। तो उन्होंने थोड़े बहुत ही कठिन आसन किए, तो महाराज देख के 5-10 मिनट देखे, महाराज चले गए। उसके बाद में फिर महाराज ने ड्राइव किया हमको शिकागो से न्यू वृंदावन, महाराज का एक वो वृंदा वैन करके, तो उसके अंदर महाराज ड्राइव कर रहे थे, गोविंद प्रभु, मैं और गौरांग प्रभु। तो काफी लंबा ड्राइव था वो, कुछ 6-7 घंटे का। तो बीच में इनको, गौरांग प्रभु को रिलीव करना था अपने आप को, तो उन्होंने महाराज को, महाराज आप थोड़ी गाड़ी पार्क करेंगे? महाराज बोले सो योगी यू डोंट हैव एनी आसन टू कंट्रोल, लेट सी। और महाराज जोर जोर से हंस रहे, रोक ही नहीं रहे गाड़ी आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया है, गाड़ी नहीं रोक रहे, और जोर जोर से गाड़ी चलाते चलाते हंस रहे हैं। सो लेट अस सी विच इज दैट आसन। तो हमारे जो ऐसे शारीरिक कार्य हैं जो इनवॉलंटरी हैं, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, फिर एक्शंस विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्री मोड्स, तीन गुणों के अधीन जो हम कार्य करते हैं, कभी सत्वगुण में आकर सत्वगुणी कार्य करते हैं, रजोगुण में आकर रजोगुणी, तमोगुण में आकर तमोगुणी, तो उनसे जो लिप्त हमारे कार्य होते हैं वो है लौकिक कर्म, एक्शंस विच आर बाइंडिंग। और फाइनली जो भी कर्म भगवान श्री कृष्ण से अलग हुए हुए कर्म हैं वो हमें बांधते हैं। तो ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? लौकिक। और इन सब का ऑपोजिट है अलौकिक, वो आपके लिए होमवर्क है, अभी आप वो घर पे कर लीजिए। तो वो है भगवान के अलौकिक कर्म। अब अद्भुत, अद्भुत का अर्थ है कि भगवान कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि जिसे देखकर सुनकर बस केवल एक ही शब्द सामने आता है और वो है अद्भुत, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। भगवान के कुछ ऐसे कर्म जो कि हम मनुष्य होने के नाते हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे भगवान ने गोवर्धन धारण किया, तो भगवान, अभी हमने सुना है कि जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो कैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं पूरा बैलेंस करके, हाँ, और इतनी ट्रेनिंग उनको लेनी पड़ती है, और यहाँ पर भगवान इतना बड़ा पर्वत और वो छोटी सी उंगली पर। तो जितने कोई अगर इंजीनियर को बुलाओ और उसको पूछो कि भाई ये कौन सी इंजीनियरिंग के टेक्निक से भगवान ने उसको बैलेंस किया है अपनी छोटी सी उंगली पर इतना बड़ा पर्वत, और वहां पर भी वो त्रिभंग में खड़े हैं, बांसुरी भी बजा रहे हैं, लीलाएं भी कर रहे हैं सब गोप गोपियों के साथ इत्यादि, यशोदा माई खिला भी रही हैं, सब कुछ चल रहा है, और ऊपर है गोवर्धन। इसको बोलते हैं अद्भुत कर्मणा, कैनॉट बी इमिटेटेड, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। ऐसे कर्म जो कभी किसी ने नहीं किए उसे भी कहते हैं अद्भुत कर्मणा। तो जैसे भगवान नरसिंह भगवान के रूप में आए और भगवान एक खंबे से बाहर निकले, अब भगवान ये लीलाओं में फेरबदल करते रहते हैं। कभी भगवान किसी और तरीके से नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, किसी और तरीके से वराह देव के रूप में प्रकट होते हैं, तो हर समय इसके अंदर फ्लेवर्स भगवान के बदलते रहते हैं। इसलिए अब हमारे कर्मों को अद्भुत क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप यदि लिस्ट निकालो तो बचपन से लेके अब तक हमारे मैक्सिमम कर्म हम केवल रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रिपीट कर, सुबह उठे, हाँ, जो भी कुछ शारीरिक कार्य किया, नाश्ता किया, हाँ, डकार मारी, निकले, फिर भूख लगी, फिर वही, दूसरे दिन भी वही 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 चलता रहता। परंतु भगवान के हरेक अद्भुत कर्म जो हैं वो निराले हैं, अपने आप में अलग हैं। और फिर तीसरा कारण है, उनके कर्मों को अद्भुत बताया गया है कि उसका जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम उसका इफेक्ट रहता है, एंड मैक्सिमम पीपल उनके ऊपर उसका इफेक्ट रहता है। अब अद्भुत ये गुण होने के पश्चात जो तीसरा गुण है कि भगवान के जो कर्म है वो अचिंत्य है। अचिंत्य का अर्थ है जो हमारे चिंतन के परे, जो हमारी बुद्धि है उसके परे जो भगवान के कर्म होते हैं उसको अचिंत्य बोलते हैं। तो क्यों भगवान अचिंत्य कर्म करते हैं, जैसे कि रासलीला भगवान ने की, समझ में नहीं आता है कि क्यों भगवान मध्य रात्रि में इन स्त्रियों के साथ रासलीला किए। क्योंकि जब भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं तो हमको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है समझने के लिए। तो जानबूझ के भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, अचिंत्य लीला, ताकि हम लोग एक साथ आकर डिस्कस करें, और जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारी लौकिक जो लीला है या कर्म है वो खत्म होंगे। So to give us enough matter to discuss, Krishna performs inconceivable pastimes. और उसके साथ भगवान जो कि स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, भगवान उसको प्रस्थापित करते हैं कि मुझे किसी के बाप को पूछने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करूं। प्रभुपाद ने एक प्रवचन में कहा भी है, लॉर्ड कृष्णा ही डजंट हैव टू आस्क एनीवन्स फादर, किसी के बाप को पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सबके बाप है। and he performs achint leela, inconceivable pastimes to test our faith. Ki hamari shraddha, bhagwan jab aisi aisi leelaye karte hain, makhan chor leela, vastra haran leela, ras leela ityadi, aisi leelaon mein bhagwan hamari shraddha ko test kar rahe hain. Ab hum ek list lenge jisme bhagwan ke karm ki divyata, इसमें 12 पॉइंट्स हैं. अब घबराइए मत, टाइम पर हो जाएगा. तो ये 12 पॉइंट्स में कैसे हम ये देखेंगे कि भगवान के कर्म की दिव्यता को अलग अलग आचार्यों ने विभिन्न जगहों पर अपने टीकाओं में दिया है. सबसे पहले कृष्ण कर्म इज दिव्य or transcendental because it is discussed by the most advanced human beings. Kaun discuss karta hai bhagwan ke karmon ko? Shukdev Goswami, Vyasadev, Narad Muni, Agastya, Atri, Angira, aise bade bade jo diggaj hain, Vidur, Maitreya, Uddhav, ye log, Brahma ji, ये लोग डिस्कस करते हैं. तो अगर हम केवल ये देखें कि किसी के एक्शंस को डिस्कस कौन करता है, तो उससे भी समझ में आएगा कि उसके एक्शंस के अंदर दिव्यता कितनी. ये पहला कारण. दूसरा कारण, कृष्ण कर्म इज अनमैच्ड इन इट्स डिस्क्रिप्शन. केवल भगवान का एक अवतार, हमने तो कितने अवतार के विषय में कह दिया, जैसे लहरें होती है समंदर में, एक अवतार मान लो राम अवतार, भगवान श्री राम. तो भगवान श्री राम का गुणगान करने के लिए जो इस संसार में, हमारे भौतिक संसार में, इस लोक में, पता है कितने श्लोक केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का गुणगान करने के लिए 100 करोड़ श्लोक हैं. एक अवतार और उनके एक अवतार के कुछ गुणों और लीलाओं का वर्णन करने के लिए. देयरफॉर कौन सेलिब्रिटी होगा जिसका इतना इलैबोरेट कोई डिस्क्रिप्शन कभी होगा, 100 करोड़ श्लोकों, ओरिजिनल संस्कृत श्लोकों का कॉम्पोजिशन जिनका गुणगान हुआ है, और ये एक अवतार है केवल भगवान. कृष्ण कर्म इज ट्रांसेंडेंटल बिकॉज इट इज नेवर स्टेल. बोरियत नहीं है उसके अंदर. मैं हाल ही में हमारे भागवतम स्टडी सर्कल में चर्चा कर रहा था कि लोग सिनेमा देखने जाते हैं. अब इतने वर्षों से सिनेमा देख रहा है कोई व्यक्ति, तो सिनेमा में क्या दिखता है और कैसे वो लोग उसको एडवर्टाइज करते हैं कि ये वाला जो अभी आने वाला, रिलीज होने वाली है ये जो फिल्म, ये मूवी जो रिलीज होने वाली है, ये ऐसी मूवी आज दिन तक बनी नहीं है, और उसका ट्रेलर ऐसे दिखाएंगे, और फिर सभीयों के अंदर ये एक उत्कंठा कि हाँ ये वाली रिलीज होने वाली है. हाँ, दबंग नाम भी ऐसा देते हैं, ऐसा कभी नाम भी किसी का सुना नहीं, देखना चाहिए देखना चाहिए. देख के आते हैं तो वही घुमा फिरा के वही स्टोरी जो पहले 5 साल पहले देखी थी उसी को घुमा फिरा के बताया, तो फिर उसमें बोरियत आती. फिर बाद में 6 महीने बाद वापस से, नहीं नहीं ये वाली अब उससे अलग है, इसकी शूटिंग लंदन में हुई है, इसकी शूटिंग अमेरिका में, इसकी शूटिंग वो स्विट्जरलैंड में हुई है. तो ऐसे ऐसे फिर उसके जाके देख कर आते हैं, तो जाके देखते हैं तो वही पेड़ों के इधर उधर गा रहे हैं गाने, खाली पेड़ लंदन के. इन दिस वर्ल्ड विल फाइंड एवरीथिंग बिकम्स स्टेल व्हेन इट कम्स टू Krishna karma, everything is nava navayaman. Krishna karma is entertaining. Unke andar manoranjan ka arth kya hota hai? Ki keval cheap entertainment nahi. Manoranjan ka arth, Parikshit Maharaj kehte hain, yena yena avatarena भगवान हरिरीश्वर करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी चन प्रभो. कि कृष्ण कथा ऐसी है जो न केवल आत्मा को शुद्ध करती है बल्कि कर्णों के लिए भी जो रमणीय है, ये है कृष्ण कथा. एंटरटेनिंग कृष्ण कर्मा इज ट्रांसेंडेंटल बिकॉज इट इज नॉट जस्ट एंटरटेनिंग, इट इज प्यूरिफाइंग. ये हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाली, यच्छृण्वतो अपैति अरतिर वितृष्णा शुद्ध्यति भक्ति अचिरेण पुंस, कि ये शुद्धता लाती है हमारे अंदर. ये है पांचवा कारण. छठा कारण, कृष्ण कर्म इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. श्रील प्रभुपाद ने कर दिखाया कि कृष्ण लीला को ले गए. आप ये सब जो पेंटिंग्स देख रहे हो, ये सारे पेंटिंग्स ये हमारे विदेशी भक्तों ने बनाए, जो कभी कृष्ण के विषय में सुने नहीं. और श्रील प्रभुपाद ने उनको जो डिस्क्रिप्शन दिया कृष्ण लीला का, उस डिस्क्रिप्शन को केवल सुनकर ये चित्रकारों ने, ये रशियन अमेरिकन, इन्होंने इतने सुंदर सुंदर चित्र निकाले. तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कि जो कभी इस संस्कृति के विषय में, कृष्ण कर्म के विषय में सुने नहीं, उनको श्रील प्रभुपाद ने दिखाया कि कृष्ण कर्मा इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. सातवां कारण है, कृष्ण कर्मा टीचेस ऑल द ह्यूमन लेसन्स फॉर आइडियल लिविंग. जैसे कि हमने रामचंद्र जी के अवतार के विषय में सुना कि उन्होंने जो कुछ किया वो अनुकरणीय है. भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के उपदेश के द्वारा और अपने उदाहरण के द्वारा दर्शाया कि कैसे एक आदर्श व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना चाहिए इस भौतिक संसार में. आठवां कारण, कृष्ण कर्म शोज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस. कि यदि हम मनुष्य, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे स्नेह हो, अलग अलग प्रकार के हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का शुद्ध निरूपण भगवान अपनी लीलाओं, अपने कर्मों के द्वारा कर देते हैं. कृष्ण कर्मा इज फॉर ऑल एजेस. बच्चे, बूढ़े, नारी, नर, जिनको भी आप लीजिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, नरसिम्हा इत्यादि जितने भी अवतार हैं, उन सब ने ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं कि चाहे कोई किसी भी उम्र का हो, उनके लिए भगवान की लीलाएं. दसवां कारण, कृष्ण कर्मा कैन बी सीन थ्रू द ईयर्स. कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके कर्म ऐसे हो कि कानों के द्वारा देखे जाएं. जैसे कि हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को साक्षात यदि हमने नहीं देखा है तो शास्त्र चक्षु से हम भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं. जैसे कि हम गीतामृत कार्यक्रम, श्रीमद् भागवतम इत्यादि के द्वारा, इसलिए भगवान ने कहा कि जहां कहीं पर भी मेरे कर्मों की चर्चा होती है, मैं वहां पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद होता हूं. और जो प्रामाणिक श्रावक, प्रामाणिक श्रोता जो होते हैं, प्रामाणिक रूप से श्रवण करते हैं मेरे कृष्ण कथा का, वो साक्षात मेरा दर्शन कर सकते हैं अपने कर्णों के द्वारा. ये है कृष्ण कर्म की महानता. और अंतिम कारण, भगवान श्री कृष्ण के जो कर्म हैं, जो भी कोई उनके कर्मों के संपर्क में आता है उसका उद्धार निश्चित है. तो यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे कर्मों के संपर्क में कोई आते ही उसका मोक्ष, उसका उद्धार निश्चित है, तो वो है दिव्य कर्म. और इसलिए भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम. तो अंत में आपको हम एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे। ये जो इतने सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, भगवान के कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, अचिंत्य हैं, और ये 12 पॉइंट्स कि भगवान श्री कृष्ण के कर्म क्यों दिव्य हैं, तो ये बस 2 मिनट का वीडियो है।
सुंदर गोपाल पुरवन मालम नयन विशालम दुखहरम
दुखहरम
वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरम कुमारं सर्वसुखसारं तत्वविचारं ब्रह्मपरम्
एक बहुत ही सुंदर श्लोक है पद्यावली का, जिसमें रूप गोस्वामी कलयुग में हम लोग जो हैं, तो हम जीवों के लिए भगवान श्री कृष्ण की कथा, उनके कर्मों, उनके लीलाओं का वर्णन, इसके विषय में वो बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, अहो अहो बीर नकलेर विदूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयश्च गीयते। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें वो कहते हैं अहो अहो भीर न कलेर विदूयते, इस कलयुग में हम लोग जो त्रस्त हैं इस कलयुग की गर्मी से, ये गर्मी का ग्रीष्म ऋतु जो चल रही है, तो बहुत उपयुक्त है ये श्लोक। तो इस श्लोक में कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव की गर्मी से जो हम त्रस्त हैं, अहो अहो बीर न कलेर विदूयते, कोई उपाय नहीं है इस गर्मी से मुक्त होने का। एकमात्र उपाय क्या है? सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, हर पग पर ये जो सुधा है, सुधा किसको कहते हैं? अमृत को। ये ऐसी अमृत की धारा है, ये ऐसे अमृत की बहुचार है कि जब कोई इसे प्राप्त कर ले, पदे पदे हर एक पग पर उसको ये जो गर्मी है कलयुग के माया के प्रभाव की, कली के प्रभाव की, उस गर्मी से वो मुक्त होगा। और ये क्या है सुधा? ये मधुरता किस प्रकार की है? दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, हर दिन यदि कोई अपने कलयुग प्रभावी गर्मी से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, तो हर दिन उसे क्या करना है? चंदन और चंद्र, जैसे लोग अलग अलग साबुन से नहाते ना, चंदन बनाए, चंदन के रूप में साबुन, मैसूर सैंडल। तो यहां पर ये कौन सी साबुन है, इसके अंदर ठंडक का कॉम्बिनेशन क्या है? चंदन चंद्र। अब देखिए, चंद्र की शीतलता और चंदन की शीतलता, देखिए ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम। तो कोई पूछे कि भैया ये कौन सी बहुचार है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है चंदन और चंद्र, ये शीतलता का कॉम्बिनेशन कौन सा है? फिर वो कहते हैं यशो यशोदा तनयश्च गीयते। यशगान, किसका यशगान? यशोदा तनय, जो भगवान श्री यशोदा नंदन है, यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण के कर्मों का गुणगान, उसका श्रवण, कीर्तन, ये है चंदन चंद्र शीतलम, ये कॉम्बिनेशन है। और जब इससे हम स्नान करेंगे दिने दिने, सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, तब अहो अहो बीर कलेर विदुयते, तब जाकर कलयुग की इस गर्मी से हमको ठंडक महसूस होगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।